आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सिंधुजा आचार्य है और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की इंग्लिश। बच्चों, आज हम आपके चैप्टर 2 माय ड्रीम स्कूल की एक्टिविटीज को सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चों, एक्टिविटीज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यह पूरा चैप्टर समराइज कर देती हूँ, यानी इस पूरे चैप्टर की समरी आपको सुना देती हूँ। बच्चों, इस चैप्टर को एक नाटक के फॉर्म में लिखा गया है, यह एक ड्रामा है। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो मुख्य पात्र हैं, वो है जानकी लाल, जो कि एक कारीगर हैं, उनकी पत्नी गौरी, उनका बेटा मंगू और उनकी बेटी विद्या। इसके अलावा जो दो अहम पात्र हैं वो है सुगन, जो कि जानकी लाल का मित्र है, और स्कूल के मास्टर या स्कूल के टीचर जगदीश शर्मा। तो बच्चों, इस चैप्टर में जानकी लाल की जो बेटी होती है विद्या, वो स्कूल जाने की इच्छा जाहिर करती है, लेकिन जानकी लाल उसे स्कूल भेजने में असमर्थ है क्योंकि वो एक गरीब इंसान है और उनकी कम आमदनी में वो एक नया खर्चा नहीं उठा सकते हैं। यह समस्या वो अपने मित्र सुगन को बताते हैं। सुगन उन्हें, जो उनके गांव के स्कूल के मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं, जगदीश शर्मा, उनके पास ले जाते हैं। जगदीश शर्मा को जब जानकी लाल अपनी समस्या बताते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी समस्या का मैं समाधान करूंगा, आपकी समस्या इतनी मुश्किल नहीं है, आप अपनी बेटी विद्या का एडमिशन गांव के किसी भी सरकारी स्कूल में या कहीं के भी सरकारी स्कूल में करवा सकते हैं, वहां उसकी कोई भी फीस, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, यह सरकार की ड्यूटी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाए। लेकिन इसके लिए जो शर्त है वो यह है कि बच्चे की आयु 6 से 14 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यह जो अधिकार है शिक्षा का, वह बच्चों को RTE के तहत मिलता है। बच्चों, RTE का फुल फॉर्म भी इस चैप्टर में बताया गया है, राइट टू एजुकेशन। फिर वो आगे बताते हैं कि राइट टू एजुकेशन में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को देश भर में निशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके साथ साथ उन्हें निशुल्क किताबें और दोपहर का खाना भी दिया जाता है। विद्या की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए, यानी जानकी लाल की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए, विद्या को फ्री में यूनिफॉर्म भी मिल जाएगी। यह तो प्राइवेट स्कूल होते हैं जो भारी मात्रा में स्टूडेंट्स पे शुल्क लगाते हैं। यहाँ तक कि RTE में यह प्रावधान भी है कि 25% गरीब और कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलवाया जाता है। गवर्नमेंट उनकी फीस और बाकी खर्चों को खुद उठाती है। इसके साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV, जो कि एक आवासीय स्कूल है, उसकी भी गवर्नमेंट ने स्थापना की है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देकर वो महिला साक्षरता दर को सुधार सके। इतनी सारी जानकारियों को सुनकर जो जानकी लाल है वो मास्टर जी का धन्यवाद करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे अब क्या करना है। तो मिस्टर शर्मा उन्हें बताते हैं, आपको विद्या और उसके जन्म प्रमाण पत्र को लेकर मेरे पास आना है। तो जानकी लाल पूछते हैं कि मास्टर जी, आप राशन कार्ड की बात कर रहे हैं? तो मिस्टर शर्मा उन्हें बताते हैं कि नहीं, मैं उस प्रमाण पत्र की बात कर रहा हूँ जो विद्या के जन्म पर पंचायत ने उसे दिया होगा। तो जानकी लाल मिस्टर शर्मा के पैर छूते हुए कहते हैं कि आपने मेरी विद्या का सपना पूरा कर दिया। और लास्ट सीन में विद्या बड़ी खुशी खुशी स्कूल जाती है और स्कूल जाकर वो स्कूल को अपना ड्रीम स्कूल कहती है। तो बच्चों, यह थी आपकी इस चैप्टर की समरी। बच्चों, इस चैप्टर में आपको आरटीई के बारे में और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में बताया है। इस चैप्टर में आपको डिटेल में बताया गया है कि कैसे आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन ऐसे बच्चों की मदद करता है जिनकी जो आर्थिक स्थिति है, जिनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर होती है, यानी वो गरीब होते हैं, तो गवर्नमेंट उन बच्चों की कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई में मदद करती है। इसके लिए उन्हें बस 6 से 14 वर्ष का होना ज़रूरी है। तो बच्चों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है। तो बच्चों, यह बहुत महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है जिसकी जानकारी आपको इस चैप्टर के माध्यम से दी गई है। आप अपने आसपास ऐसे लोगों को जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, ऐसे बच्चों को आप आरटीई के बारे में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी लड़कियां जो स्कूल नहीं जा पा रही हैं उन्हें आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में भी बताइएगा कि कैसे वहाँ पर आपको फ्री में या निःशुल्क पढ़ाई में आपकी मदद की जाती है। आपको आरटीई में फ्री एजुकेशन यानी फ्री पढ़ाई के साथ साथ आपको फ्री में बुक्स दी जाती है, और जो दोपहर का खाना होता है जिसे आप मिड डे मील के नाम से जानते होंगे वो भी आपको गवर्नमेंट स्कूल में दिया जाता है। और इसके साथ साथ कई बार अगर किसी की आर्थिक स्थिति ज़्यादा ही कमज़ोर होती है तो उन्हें जो स्कूली गणवेश होती है वो भी प्रदान की जाती है। तो बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसे आप हमेशा याद रखिएगा, और जिसे इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उसे आप ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इस इन्फॉर्मेशन की वजह से, आपकी इस नॉलेज की वजह से, आपके दिए हुई किसी इन्फॉर्मेशन की वजह से कोई बच्चा स्कूल जा पाए और पढ़ पाए। तो बच्चों, यही थी आपकी पूरे जो चैप्टर है उसकी समरी। अब हम इस चैप्टर की जो बची हुई एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने वर्ड मीनिंग और एक्टिविटी नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लिया था, तो अब हमारे पास एक्टिविटी 3rd, 4th और जो 5th एक्टिविटी है वो है जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। तो अब एक्टिविटी नंबर 3rd, आप अपने आसपास ऐसे लोगों को जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, ऐसे बच्चों को आप आरटीई के बारे में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी लड़कियां जो स्कूल नहीं जा पा रही हैं उन्हें आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में भी बताइएगा कि कैसे वहाँ पर आपको फ्री में या निःशुल्क पढ़ाई में आपकी मदद की जाती है। आपको आरटीई में फ्री एजुकेशन यानी फ्री पढ़ाई के साथ साथ आपको फ्री में बुक्स दी जाती है, और जो दोपहर का खाना होता है जिसे आप मिड डे मील के नाम से जानते होंगे वो भी आपको गवर्नमेंट स्कूल में दिया जाता है। और इसके साथ साथ कई बार अगर किसी की आर्थिक स्थिति ज़्यादा ही कमज़ोर होती है तो उन्हें जो स्कूली गणवेश होती है वो भी प्रदान की जाती है। तो बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसे आप हमेशा याद रखिएगा, और जिसे इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उसे आप ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इस इन्फॉर्मेशन की वजह से कोई बच्चा स्कूल जा पाए और पढ़ पाए। तो बच्चों, यही थी आपकी पूरे जो चैप्टर है उसकी समरी। अब हम इस चैप्टर की जो बची हुई एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने वर्ड मीनिंग और एक्टिविटी नंबर 1st और 2nd को सॉल्व कर लिया था, तो अब हमारे पास एक्टिविटी 3rd, 4th और जो 5th एक्टिविटी है वो है जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अब एक्टिविटी नंबर थर्ड का पहला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, इनका अध्ययन करना है। नंबर 1, दे सी हर ऑफ टू स्कूल। उन्होंने उसे स्कूल के लिए विदा किया। द टू फ्रेंड्स सेट आउट ऑन अ लॉन्ग जर्नी। दोनों दोस्त एक लंबी यात्रा के लिए रवाना हो गए। द फ्लाइट टुक ऑफ एट द राइट टाइम। जो फ्लाइट थी उसने सही समय पर उड़ान भरी। जो फ्लाइट यानी आपका प्लेन। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। यह टेबल लकड़ी से बनी हुई है, यह लकड़ी से निर्मित है। द टीचर पॉइंटेड आउट मेनी मिस्टेक्स इन माई पोयम। टीचर ने मेरी पोयम में बहुत सारी मिस्टेक्स, बहुत सारी गलतियों को इंगित किया, यानी उन्होंने मुझे बताया। द अंडरलाइन वर्ड आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। विद द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा वर्ड प्रिपोजिशन द फर्स्ट वर्ड वर्ब गेट्स इट्स मीनिंग चेंज्ड। बच्चों आप देखेंगे कि हर सेंटेंस में एक वर्ड के नीचे या दो वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। बच्चों वो फ्रेजल वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब में वर्ब के अलावा प्रिपोजिशन भी होता है जिससे उसका मतलब बदला जाता है। अब आप देखेंगे ऑफ का मतलब बंद करना होता है, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में स्विच ऑफ द लाइट्स वगैरह, तो ऑफ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बंद करना। लेकिन यहाँ पे ऑफ का मतलब ऑफ के बाद प्रिपोजिशन टू लगाया तो यहाँ पे क्या हो गया उसका मतलब, यहाँ पे उसका मतलब हो गया किसी को विदा करना। फिर सेकेंड सेंटेंस में आप देखेंगे सेट आउट तो उसका मतलब हो गया रवाना होना, टुक ऑफ उड़ान भरना, मेड ऑफ निर्मित होना, पॉइंटेड आउट इंगित करना। तो बच्चों ये सारे अंडरलाइन वर्ड्स फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसमें एक्स्ट्रा वर्ड प्रिपोजिशन से उस वर्ड को जो उसका मतलब है उसको बदल दिया जाता है। तो बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी फाइंड आउट द फ्रेजल वर्ब्स दैट बिगिन विद द वर्ड्स गिवन बिलो। अब आपको बच्चों, आप सभी के पास डिक्शनरीज तो होंगी ही, आपको उन डिक्शनरीज की मदद से जो आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं इनसे जो फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं वो ढूंढ कर लिखने हैं। तो आपको कौन कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको दिया हुआ है कॉल, पुट, लुक, गेट, टैक एंड ब्रेक। ऑल्सो राइट द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स दैट यू हैव फाउंड। इसके अलावा आपको जो फ्रेजल वर्ब्स मिलती हैं उनके मतलब भी आपको लिखने हैं। तो बच्चों यह काम आप खुद कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डिक्शनरी की हेल्प लेनी है और उसमें ये जो 6 वर्ड्स हैं इनसे जो फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं वो आपको ढूंढने हैं और उनके मतलब सहित आपको उनको लिखना है। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी दीज सेंटेंसेस। द क्लर्क सेड टू कपिल द स्कूल हैज नॉट रिसीव्ड योर स्कॉलरशिप। द क्लर्क टोल्ड कपिल दैट द स्कूल हैड नॉट रिसीव्ड हिज स्कॉलरशिप। क्लर्क ने कपिल से कहा स्कूल को तुम्हारी स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति नहीं मिली है अभी तक। और दूसरे सेंटेंस में द क्लर्क टोल्ड कपिल दैट द स्कूल हैड नॉट रिसीव्ड हिज स्कॉलरशिप। क्लर्क ने कपिल से कहा कि स्कूल को उसकी छात्रवृत्ति नहीं मिली है। सेकेंड ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, विमला सेड टू कमला आर यू टेकिंग पार्ट इन द पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट। विमला ने कमला से कहा क्या तुम पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हो, क्या तुम पोस्टर बनाने वाले प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हो। और दूसरे सेंटेंस में विमला आस्क्ड कमला इफ शी वॉज टेकिंग पार्ट इन द पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट। विमला ने कमला से पूछा कि क्या वो पोस्टर बनाने वाले कॉन्टेस्ट में या पोस्टर बनाने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। तो बच्चों आप जब इन ग्रुप ऑफ सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों सेंटेंस में एक ही बात कही गई है, लेकिन जो पहले वाला सेंटेंस है उसमें डायरेक्ट बोला गया है कि क्लर्क ने पहले कपिल के पास गया क्लर्क और फिर उसने ये बात बोल दी। और जो सेकेंड सेंटेंस है वो यह बताता है कि कोई ये बता रहा है कि क्लर्क ने कपिल को कहा कि स्कूल को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है, यानी यह इनडायरेक्ट स्पीच हुई। जो पहला सेंटेंस था वो डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल था, यानी क्लर्क ने डायरेक्ट कपिल से जाकर यह चीज बोल दी। और जो सेकंड सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि इसमें जो क्लर्क है वो कपिल से डायरेक्ट नहीं बोलता है, वो कोई तीसरा व्यक्ति यह बताता है कि क्लर्क ने ऐसा कपिल को कहा था। और सेकंड ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस में भी यही है कि जो पहला सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है कि विमला कमला के पास गई और उसने पूछा कि क्या तुम पोस्टर बनाने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हो। और सेकंड सेंटेंस में कोई और शायद ये बात कर रहा है, या इनडायरेक्ट रूप से कहा जा रहा है कि विमला ने कमला से पूछा। तो बच्चों, ये थे आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स। अब आगे चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब बच्चों, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो बच्चों, इसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग के जो तीन सेंटेंसेस है वो सॉल्व करवाऊंगी, और आपको उससे सीखकर जो बचे हुए दो सेंटेंसेस हैं वो आपको खुद को सॉल्व करने हैं। तो जो पहला सेंटेंस है वो है, भानु सेड टू हिज ब्रदर, योर फ्रेंड इज कॉलिंग यू। बच्चों, इस सेंटेंस को सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज करते हैं तो वर्ब का फॉर्म पास्ट हो जाता है, यानी पास्ट फॉर्म की वर्ब यहां पर लगती है। तो बच्चों, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, जो भी वर्ब है हमारे इन सेंटेंसेस में हम उनको पास्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो आपका जो पहला इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, भानु सेड टू हिज ब्रदर, योर फ्रेंड इज कॉलिंग यू, तो बच्चों इसको हम जब चेंज करेंगे तो सेड टू टोल्ड हो जाएगा कि भानु ने अपने भाई से कहा, तो भानु टोल्ड हिज ब्रदर। फिर बच्चों हम क्वेटेशन मार्क और कॉमा को हटाकर वहां पर लगाएंगे दैट हिज फ्रेंड। अब योर फ्रेंड, अब यहां पर डायरेक्ट भानु ने बोला था तो योर फ्रेंड बोला, लेकिन अब जब इनडायरेक्टली बोला जा रहा है तो अब हिज फ्रेंड हो जाएगा। तो भानु टोल्ड हिज ब्रदर दैट हिज फ्रेंड इज का पास्ट फॉर्म वॉज कॉलिंग हिम। तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा, भानु टोल्ड हिज ब्रदर दैट हिज फ्रेंड वॉज कॉलिंग हिम। भानु ने अपने ब्रदर से कहा कि उसका फ्रेंड उसे बुला रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, प्रकाश सेड टू प्रिया, आर यू विलिंग टू गो ऑन द पिकनिक ट्रिप। प्रकाश ने प्रिया से कहा, क्या तुम पिकनिक ट्रिप पर जाना चाहती हो, या पिकनिक ट्रिप पर जाने की तुम्हारी इच्छा है। तो बच्चों, यहां पर प्रकाश ने क्या किया, क्वेश्चन किया। तो जब हम इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करेंगे तो सेड टू चेंज होके आस्क्ड हो जाएगा, यानी पूछना। तो प्रकाश आस्क्ड प्रिया, क्वेटेशन मार्क और कॉमा हटा के हम लगाएंगे इफ, क्योंकि वो पूछ रहा है कि क्या। तो इफ शी, यू का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, शी वॉज, क्योंकि बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो वर्ब होती है वो पास्ट फॉर्म की होती है। तो इफ शी वॉज विलिंग टू गो ऑन द पिकनिक ट्रिप, और क्वेश्चन मार्क और क्वेटेशन मार्क जो लास्ट में है वो भी हट जाएगा और उसकी जगह फुल स्टॉप लग जाएगा। अब बच्चों, थर्ड सेंटेंस, द कंडक्टर सेड टू मी, आई कांट गिव यू अ न्यू टिकट। कंडक्टर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें दूसरा टिकट नहीं दे सकता हूं। तो कंडक्टर ने मुझे डायरेक्ट आकर बोला, मैं तुम्हें दूसरा या मैं तुम्हें नया टिकट नहीं दे सकता हूं। तो बच्चों, यहां पे सेड टू चेंज होके क्या हो जाएगा, टोल्ड। द कंडक्टर टोल्ड मी, अब क्वेटेशन मार्क और कॉमा हटके वहां लग जाएगा दैट ही, अब कैन का क्या हो जाएगा, कुड। द कंडक्टर टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट गिव मी अ न्यू टिकट। अब यू को हमने मी में चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में बात हो रही है। पहला सेंटेंस हमें बोल रहा है कि कंडक्टर मेरे पास डायरेक्ट आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नया टिकट नहीं दे सकता। लेकिन दूसरे सेंटेंस में कि कंडक्टर ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें नया टिकट नहीं दे सकता। तो बच्चों, ये थे आपके 3 सेंटेंसेस जो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। अब अगले 2 सेंटेंस मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, लेकिन सॉल्व आपको खुद को करना है। दे सेड टू द वॉचमैन, यू वर अब्सेंट यस्टरडे। उन्होंने वॉचमैन से कहा, तुम कल अनुपस्थित थे या तुम कल नहीं आए थे। और दूसरा सेंटेंस, शी सेड टू हर सन, डू यू गो टू मार्केट विद हर्ष। उसने अपने बेटे से कहा, क्या तुम हर्ष के साथ मार्केट जाओगे। तो बच्चों, इन 2 सेंटेंसेस को आप अपने टीचर या अपने फ्रेंड्स की हेल्प से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। अब एक्टिविटी नंबर 4, विद्या कुड फुलफिल हर डिजायर टू गो टू स्कूल, वर्क इन पेयर, डिस्कस इट विथ योर पार्टनर, हाउ विद्या वुड हैव फेल्ट देयर, राइट हर एक्सपीरियंस इन अ पैराग्राफ फॉर्म। विद्या का जो स्कूल जाने का सपना था वो पूरा हुआ। अब 2-2 के ग्रुप में काम कीजिएगा इस पर और अपने पार्टनर से इस बारे में चर्चा कीजिए कि विद्या को वहां पर कैसा लगा होगा। उसके एक्सपीरियंस को अपनी भाषा में एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखिए। तो बच्चों, आपको यह एक्टिविटी भी खुद सॉल्व करनी है। आपको क्या करना है कि आपको 2-2 का पेयर बना लेना है और अपने पार्टनर के साथ इस बारे में डिस्कस करनी है कि जब विद्या पहली बार स्कूल गई तो विद्या को कैसा लगा होगा। उसका जो भी अनुभव हुआ होगा पहली बार स्कूल जाने का, उसे आपको अपने हिसाब से एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों, यह एक्टिविटी भी आप सॉल्व कीजिएगा। अब एक्टिविटी नंबर 5 की पहली एक्टिविटी है, डिवाइड द क्लास इंटू 4 ग्रुप्स, आस्क ईच ग्रुप टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर लोकेलिटी हु डू नॉट गो टू स्कूल, ऑल्सो दे शुड मैंशन द रीजन ऑफ देयर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब बच्चों, पूरी क्लास को 4 हिस्सों में बांट देना है या पूरी क्लास को 4 हिस्सों में बंट जाना है और हर ग्रुप को ऐसे बच्चों की लिस्ट बनानी है जो उनकी लोकेलिटी यानी उनके आसपास रहते हैं और वो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। और आपको यह मेंशन भी करना है, ये भी लिखना है कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो आपको इसमें ऐसे बच्चों की सबसे पहले तो लिस्ट बनानी है जो स्कूल नहीं जाते हैं और आपके आसपास रहते हैं, और उसके साथ साथ ही वो कारण भी बताना है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। अब सेकेंड एक्टिविटी या सेकेंड क्वेश्चन, शेयर द रूल्स ऑफ RTE एंड KGBV विद द पेरेंट्स ऑफ सच चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स। तो बच्चों, आपको वो जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं उनके माता पिता को RTE यानी राइट टू एजुकेशन और KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इनके जो रूल्स हैं, इनके जो नियम हैं, वो उन्हें बताने हैं अपनी टीचर की मदद से। तो सबसे पहले तो आपको लिस्ट बनानी है और वो कारण भी मेंशन करना है कि वो जिस कारण से स्कूल नहीं जाते हैं, और फिर अपने शिक्षक की मदद से उन बच्चों के माता पिता को RTE राइट टू एजुकेशन और KGBV के जो नियम हैं उनके बारे में बताना है। तो बच्चों, यह था हमारा आज का चैप्टर, माई ड्रीम स्कूल। तो बच्चों, अब यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा और इसकी जो एक्टिविटीज मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाई है उसे सॉल्व जरूर कीजिएगा। आपको डिफिकल्टी हो तो आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आपके बड़े, आप इनमें से किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों, हम ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। तो गुड लक फॉर योर स्टडीज।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।